नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश का कपड़ा क्षेत्र 2030 तक 9 लाख करोड़ रुपए का वार्षिक निर्यात लक्ष्य हासिल कर लेगा। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र की सभी तैयारियां पूरी, कल से शुरू होगा सत्र। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संस्कृत शिक्षा से जुड़े 261 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की और चंपावत जिले में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के कौशल विकास के लिए आवेदन शुरू, 20 फरवरी तक हो सकेंगे आवेदन। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं गीता नेगी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की सांस्कृतिक विविधता देश के विभिन्न भागों में बनने वाले वस्त्रों में झलकती है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टेक्स 2025 में उपस्थिति लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस आयोजन में हमारे परिधानों के जरिए भारत की सांस्कृतिक विविधता के भी दर्शन होते हैं।
भारत टेक्स के इस आयोजन में हमारे परिधानों के जरिए भारत की सांस्कृतिक विविधता के भी दर्शन होते हैं। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, कितने तरह के पारंपरिक परिधान है। ऐसे आयोजनों के जरिए हमारी ये विविधता और विशेषता वस्त्र उद्योग के विस्तार का भी माध्यम बने।
श्री मोदी ने कहा कि फार्म फाइबर, फैब्रिक, फैशन और फॉरेन का विजन एक मिशन बन गया है और यह भारत के विकास के विभिन्न क्षेत्रों का विस्तार कर रहा है।
ये मिशन ग्रोथ के नए रास्ते खोल रहा है। आज हम दुनिया के छठे सबसे बड़े टेक्सटाइल और एप्रल्स एक्सपोर्टर है। हमारा टेक्सटाइल निर्यात 3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। अब हमारा लक्ष्य है 2030 तक हम इसे 9 लाख करोड़ रुपए तक लेकर जाएंगे।
प्रधानमंत्री ने प्रदर्शनी स्थल का भी दौरा किया और प्रदर्शकों से बातचीत की। भारत टेक्स एक प्रमुख वैश्विक कार्यक्रम है। इसका आयोजन 14 से 17 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम कच्चे माल से लेकर तैयार उत्पादों और सहायक उपकरणों सहित संपूर्ण कपड़ा मूल्य श्रृंखला को एक छत के नीचे लाता है। भारत टेक्स प्लेटफॉर्म कपड़ा उद्योग का सबसे बड़ा और सबसे व्यापक कार्यक्रम है। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है, जिसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने देहरादून में बजट सत्र के संबंध में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और शीर्ष अधिकारियों के साथ व्यवस्थाओं की समीक्षा की। समीक्षा के बाद उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में बताया कि सत्र के लिए उनके पास विधायकों ने 521 सवाल भेजे हैं, जबकि 2 विधेयक भी प्राप्त हुए हैं। एक सवाल के जवाब में श्रीमती भूषण ने कहा कि सत्र की अवधि इस बात पर निर्भर करती है कि विधानसभा में कितना काम होना है और इस बात का निर्णय सरकार करती है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र पहली बार नेशनल ई विधान एप्लीकेशन ई निवा के अंतर्गत संचालित होगा। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि विधायकों की तकनीकी मदद के लिए 2 इंजीनियरों को सत्र अवधि में विधानसभा भवन में नियुक्त करने का आदेश दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि डिजिटाइजेशन की तरफ से तेजी से काम हो रहा है, लेकिन यह सत्र पूरी तरह से पेपरलेस नहीं होगा। कार्यसूची विधानसभा में आने वाले प्रश्न और उनके उत्तर, राज्यपाल का अभिभाषण और बजट डिजिटली उपलब्ध होंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि बोर्ड परीक्षाओं के लिए जा रहे बच्चों की किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे स्कूलों से बातचीत कर यह सुनिश्चित करें कि यातायात के कारण बच्चों को अपने परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में कोई परेशानी न हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 261 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति और सम्मान प्रदान किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार संस्कृत भाषा के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि संस्कृत विद्यालयों में पढ़ रही बालिकाओं के प्रोत्साहन के लिए राज्य में पहली बार गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है, जिसके तहत संस्कृत विद्यालयों में पढ़ने वाली बालिकाओं को वार्षिक छात्रवृत्ति दी जा रही है।
हमने पहली बार गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से संस्कृत विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी वर्गों के छात्राओं को प्रतिमाह वर्ष में 3012 रुपए प्रतिवर्ष की छात्रवृत्ति भी इसमें प्रदान की जा रही है। साथ ही भीमराव अंबेडकर अनुसूचित जाति और जनजाति छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से भी एससी और एसटी वर्ग के संस्कृत विषय के विद्यार्थियों को भी इतनी ही राशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जा रही है। यही नहीं, संस्कृत भाषा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को संस्कृत छात्र प्रतिभा सम्मान योजना में सम्मानित भी किया जा रहा है। इसके अंतर्गत हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रथम पुरस्कार के रूप में 5100 रूपए, द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 41 और तृतीय स्थान अर्जित करने वाले विद्यार्थियों को 2100 रूपए की धनराशि भी प्रदान की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 13 जिलों में 13 संस्कृत ग्राम विकसित करने की योजना पर कार्य चल रहा है। उत्तराखंड संस्कृत अकादमी हरिद्वार के माध्यम से अखिल भारतीय शोध सम्मेलन, वेद सम्मेलन, ज्योतिष सम्मेलन जैसे कार्यक्रमों का आयोजन कर संस्कृत भाषा को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना पीएम अजय के तहत चंपावत जिले में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम को मंजूरी मिल गई है। जिला समाज कल्याण अधिकारी आरएस सामंत ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर ट्रेड में 50 प्रशिक्षार्थियों को 5 महीने में 250 घंटे का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस योजना के तहत उत्तराखंड के निवासी अनुसूचित जाति के वे लोग आवेदन कर सकते हैं जिनकी आयु 18 से 45 वर्ष के बीच है। वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रूपये तक होने वाले आवेदकों को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही इस प्रशिक्षण में कम से कम 30% महिलाओं की सहभागिता अनिवार्य होगी। आवेदन के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी, परिवार रजिस्टर और स्कूल प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज आवश्यक होंगे। आवेदन की प्रक्रिया में इच्छुक उम्मीदवारों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र भरकर 20 फरवरी तक जिला समाज कल्याण कार्यालय में जमा करना होगा। सभी आवेदनों की जाँच के बाद चयन समिति द्वारा प्रशिक्षार्थियों की सूची तैयार की जाएगी और चयनित सूची संबंधित संस्था को उपलब्ध कराई जाएगी। चमोली के जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने जिला प्रेस क्लब के कार्यालय और जिला मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया। इसके साथ ही जिला प्रेस क्लब की ओर से एआई के दौर में पत्रकारिता व चुनौतियां विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी शुरू हुई। संगोष्ठी का शुभारंभ बद्रीनाथ विधायक लखपत बुटोला और जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने किया। जिलाधिकारी ने कहा कि पत्रकारिता में इन दिनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तेजी से प्रयोग बढ़ रहा है, लेकिन पत्रकार द्वारा स्वयं के प्रयासों से जमीनी स्तर पर किए जाने वाले कार्य में मानवीय दृष्टिकोण का समावेश होता है, जबकि एआई में मानवीय दृष्टिकोण और संवेदना का अभाव रहता है। ऐसे में समाचार और सूचनाओं के प्रसारण में पत्रकार को अधिक जिम्मेदार से कार्य करने की आवश्यकता है। और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ की खबर को आज लगभग सभी समाचार पत्रों ने प्राथमिकता दी है। राष्ट्रीय सहारा लिखता है स्टेशनों पर रेलवे हुआ सतर्क। दैनिक जागरण की खबर है बद इंतजामी ने ली 18 जाने, जांच शुरू। वहीं नवोदय टाइम्स लिखता है गृह मंत्रालय को सौंपी गई प्रारंभिक रिपोर्ट, रेलवे ने बनाई जांच समिति। कल से उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। इस समाचार पर अमर उजाला का शीर्षक है बजट सत्र की तैयारियां पूरी, 521 सवाल गरमाएंगे सदन। प्रधानमंत्री करेंगे विश्व के दूसरे सबसे ऊंचे ट्रैक जनक ताल का शिलान्यास। इस सुर्खी के साथ अमर उजाला की खबर है मुखबा हर्षिल दौरे पर पीएम मोदी नालापानी घाटी में मुलिंगना पास भी शुरू करेंगे। संस्कृत के संरक्षण और विकास के लिए राज्य सरकार के प्रयासों के संबंध में दैनिक जागरण लिखता है सभी जिलों में विकसित किए जा रहे संस्कृत ग्राम। इसी खबर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हवाले से हिन्दुस्तान समाचार पत्र लिखता है उत्तराखंड को संस्कृत शिक्षा के क्षेत्र में भी मॉडल बनाएंगे धामी। और फास्टैग के नए नियम पर आज अमर उजाला ने लिखा है आज से फास्टैग का नया नियम, देरी पर अतिरिक्त जुर्माना। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा देश का कपड़ा क्षेत्र 2030 तक 9 लाख करोड़ रुपए का वार्षिक निर्यात लक्ष्य हासिल करेगा। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र की सभी तैयारियां पूरी, कल से शुरू होगा सत्र। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संस्कृत शिक्षा से जुड़े 261 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की और चंपावत जिले में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के कौशल विकास के लिए आवेदन शुरू, 20 फरवरी तक हो सकेंगे आवेदन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।